आज है 11 मार्च दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस और बसपा का पत्ता साफ किया नरेंद्र मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत के पार। अमित शाह ने क्या कहा?
आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं और इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं है।
अखिलेश यादव ने हार स्वीकार की पर बसपा नेता मायावती ने वोटिंग मशीन पर ही सवाल खड़े किए।
मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है?
पंजाब में कांग्रेस ने अकाली बीजेपी गठबंधन को धूल चटाई। आम आदमी पार्टी के सपने चकनाचूर। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की हार। लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 47 सीटों पर जीत मिली है। उत्तराखंड की 70 सीटों में से बीजेपी को 57 और कांग्रेस को 11 सीटें हासिल हुई हैं। पंजाब की 117 सीटों में से 77 पर जीत दर्ज कर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। 20 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। गोवा की 40 सीटों में से कांग्रेस ने 17 सीटें हासिल की हैं। भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली हैं। मणिपुर में 26 सीटों के साथ कांग्रेस पहले नंबर पर रही है। उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद की राजनीतिक हलचल की जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलने के बाद अब राज्य में नई सरकार बनने की कवायदें शुरू हो गई हैं। देर शाम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजभवन जाकर राज्यपाल राम नाईक को इस्तीफा सौंपा और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। इससे पहले अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात में हार को स्वीकार करते हुए कहा कि वो इस हार की समीक्षा करेंगे। वहीं बीएसपी नेता मायावती ने केंद्र सरकार पर चुनाव में धांधली और ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इसकी जांच कराने की मांग की है।
ये थे समीर आत्मज मिश्र। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने नीदरलैंड्स की सरकार पर नाजियों की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया है। तुर्की के विदेश मंत्री नीदरलैंड्स के रोटेडम में एक रैली करने वाले थे जिसे मंजूरी नहीं दी गई। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तुर्की ने धमकी दी थी कि अगर उनके विदेश मंत्री को इजाज़त नहीं दी गई तो नीदरलैंड्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इस वजह से इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। तुर्की में अगले महीने संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह होना है। तुर्की के विदेश मंत्री इसी को लेकर रैली करने वाले थे। सीरिया की राजधानी दमिश्क से मिली रिपोर्टों के मुताबिक 2 बम धमाकों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। धमाके एक पुराने कब्रिस्तान के पास हुए जहां शिया मुसलमानों के मकबरे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक हमलावरों ने वहां यात्रियों को लाने वाली बसों को निशाना बनाया। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर इराक के नागरिक हैं। अभी किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्लामिक स्टेट को मात देने के इरादे को एक विश्वसनीय पहल बताया है। एक टेलीविजन साक्षात्कार में असद ने कहा कि अमरीका के नए प्रशासन और उनकी सरकार के बीच सैद्धांतिक तौर पर सहयोग की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने उत्तरी सीरिया में अमरीकी सैनिकों की मौजूदगी को अतिक्रमण बताया। बीते 6 साल से जारी संघर्ष के दौरान अमरीका ने असद के विरोधियों का साथ दिया है। चीन का कहना है कि 2 बच्चों की नीति से उल्लेखनीय नतीजे मिले हैं। परिवार नियोजन से जुड़े एक अधिकारी वांग पियांग ने बताया कि बीते साल 1,80,00,000 बच्चों का जन्म हुआ, जो बीते 5 साल के औसत से 20,00,000 ज्यादा है। उन्होंने कहा, हमारा अनुमान है कि दूसरे बच्चे की नीति की वजह से 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साल 2016 से 2020 तक हर साल 1,70,00,000 से 1,90,00,000 के बीच बच्चों का जन्म होगा। ये थे चीन के परिवार नियोजन अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना के हवाई हमले में 20 से ज़्यादा आम लोगों की मौत हो गई। एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक हमला कोउआ पोर्ट के करीब शुक्रवार देर रात को हुआ। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी।
मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है। आंकड़ों की गहराई में मैं नहीं गया, मगर अभी जो विजय दिखाई पड़ती है आजादी के बाद की सबसे बड़ी विजय।
मोदी जी हमारे देश को पहले अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं, तो उनके सानिध्य में तो बीजेपी को जीतना ही था,
क्योंकि हरीश रावत ने जो अभी यूथ के लिए इतनी सारी वैकेंसी आई थी सारी कैंसिल कर दी थी, तो हम लोगों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था हरीश रावत के आने से, ऊपर से उनके ऊपर इतना सारा करप्शन है।
ढोल ताशों की धुन पर नाचते, कामयाबी का जश्न मनाते, आतिशबाजी छोड़ते और एक दूसरे के मुंह में लड्डू ठूंसते बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को भारी चुनावी कामयाबी मिली है। दोनों राज्यों में विरोधियों को प्रचंड जन समर्थन के रोड रोलर तरह रौंदते हुए नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के झंडे गाड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 403 में से 311 और उत्तराखंड में 70 में से 57 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि पंजाब में वोटरों ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है और वहां शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को बुरी हार का मुंह देखना पड़ा है। गोवा और मणिपुर में भी कांग्रेस बीजेपी पर बढ़त बनाए हुए है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी को। पहले एक नज़र चुनाव नतीजों पर। निखिल रंजन की रिपोर्ट।
5 राज्यों में चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू होने और लखनऊ में ढोल नगाड़ों के साथ गुलाल उड़ने के बीच वक्त का फासला बहुत कम था। सीटों के रुझान आने के साथ बहुत जल्द ही बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के आंकड़े मजबूत होते चले गए और पता चला कि इस बार पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत को भी पीछे छोड़ दिया है। अंतिम नतीजे आने तक बीजेपी 308 सीटें जीत चुकी थी। इनमें अगर सहयोगी दलों की सीटें भी मिला दें तो आंकड़ा 324 पर पहुंच जाता है। बीजेपी की इस 3/4 जीत का श्रेय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है तो दूसरी तरफ अमित शाह के जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को बेहतर तालमेल के साथ इस्तेमाल करने का भी। हालांकि अमित शाह ने इस जीत का श्रेय पार्टी की विकासवादी नीतियों को दिया।
मोदी सरकार ने 3 साल में जो सरकार का कामकाज है इस पर ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है।
समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव में नाकाम रहा और 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाला गठबंधन 100 के आंकड़े को भी नहीं छू सका। समाजवादी पार्टी को 50 और कांग्रेस को महज 7 सीटें ही हासिल हो सकी। सबसे बुरा हाल हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, जिसके खाते में केवल 19 सीटें आई हैं और पार्टी प्रमुख मायावती ईवीएम मशीनों को इसका जिम्मेदार बता रही हैं।
मैं खुली चेतावनी देती हूं, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं।
उत्तर प्रदेश के साथ ही बीजेपी की जीत का डंका पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बज रहा है। कुल 70 सीटों वाली विधानसभा में 56 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस को केवल 12 सीटें ही मिली हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत इस चुनाव में दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। हरीश रावत ने इसे मोदी का करिश्मा बताया है।
आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं या मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मैंने जो कहा है मैं उसको फिर दोहरा देता हूं। मोदी क्रांति को और जो है ईवीएम चमत्कार को सलाम।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी को अकाली दल के साथ पंजाब में हार का मुंह देखना पड़ा और यहां न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा काम आया न ही अकाली दल की क्षेत्रीय अपील। पंजाब की 117 में 78 सीटें कांग्रेस को मिली हैं जबकि सत्ताधारी गठबंधन अकाली दल और बीजेपी को महज 18 सीटें हासिल हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी को कुछ सफलता जरूर हासिल हुई है। आपने 23 सीटें जीतकर अपने लिए मुस्कुराने की वजह भले ही ढूंढ ली हो लेकिन राज्य में वैकल्पिक सरकार देने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष:
पंजाब के अंदर हमें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि वहां हमारी सरकार बनेगी और हमें ये कहने में बिल्कुल किसी तरीके से कोई संकोच नहीं है कि पंजाब के जो नतीजे आए हैं उनसे हमें निराशा हुई है। न केवल निराशा हुई है बल्कि अब ये हमें इस बैठकर इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि हमसे कहाँ पे गलती हुई और क्यों हम जो जीतने की उम्मीद कर रहे थे हमको जीत नहीं हासिल हुई।
स्पष्ट बहुमत वाले नतीजों के बीच ही दो राज्यों में सीटों का बंटवारा इस तरह हुआ है कि किसी भी दल के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। गोवा की 40 सीटों में जहां बीजेपी को 13 सीटें मिली हैं वहीं कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। मणिपुर के मतदाताओं ने भी किसी एक पार्टी के पर जीत का सहरा नहीं बांधा है। राज्य में 15 साल से सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी को 25 सीटें हासिल हुई हैं जबकि बीजेपी ने 21 सीटें हासिल की है। यहां भी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस या बीजेपी को दूसरे दलों से समर्थन हासिल करना होगा।
ये थी निखिल रंजन की रिपोर्ट। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं पर चर्चा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ही है जहां बीजेपी ने विरोधियों को साफ कर दिया है। आइए सुनते हैं कि नतीजे आने के बाद राजनीतिज्ञों की क्या प्रतिक्रिया रही। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की।
आज सबने ये स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे विरोधी भी अगर पीरियड से देखो उनको स्वीकार करने पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं और इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं है।
उधर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली।
कभी कभी लोकतंत्र में समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ पहली कैबिनेट के फैसले के इंतजार करिए कि किसानों के सभी कर्जे माफ हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा तो शायद उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ साथ देश के किसानों के भी कर्ज माफ होंगे। और फिर एक्सप्रेस वे पसंद नहीं आया तो शायद उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन आएगी।
लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने चुनाव प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम समाज का जो वोट है 18-20% के करीब है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो, इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है?
सवाल था मायावती का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश है।
सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा लोगों ने इसलिए स्वीकार किया कि कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार किया था, सपा बसपा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है और अब लोगों को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, जातिवाद और परिवारवाद अस्वीकार है। जिन्हें लोकतंत्र की परिभाषा अभी समझना चाहिए था, लेकिन जो परिवार की राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, जो व्यक्ति की राजनीति करते हैं, उन्हें लोकतंत्र की ताकत देख करके शायद सदमा पहुंचा होगा।
जाति की राजनीति और परिवार की राजनीति करने वालों पर केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला। कार्यक्रम में शामिल करते हैं हिंदू बिजनेस लाइन की पॉलिटिकल एडिटर पूर्णिमा जोशी को, जो ठीक मेरे सामने इस वक्त बैठी हुई हैं। पूर्णिमा, आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर किया, ये जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि परिवार की राजनीति, जाति की राजनीति करने वालों को जवाब दिया है, तो क्या इस चुनाव नतीजों के बाद जाति की राजनीति खत्म हो गई है या उससे आगे निकल आए हैं नरेंद्र मोदी?
नहीं, दोनों ही बातें थोड़ी थोड़ी सही हैं
जी।
वो इसलिए कि जाति की राजनीति तो बीजेपी ने भी खूब की इस इलेक्शन में। उन्होंने नॉन जाटव शेड्यूल कास्ट और नॉन यादव ओबीसी को टारगेट किया, दो छोटी पार्टियों से संगठन किया जिस जो कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट उसका बेसिस था। तो जाति की राजनीति तो बीजेपी ने भी खुद की, लेकिन उसमें यह है कि नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा पॉपुलर हैं अभी तक कि वो कुछ भी कर सकते हैं,
जो भी वो करते हैं, जो भी लोगों को समझ में आ जाता है,
लोगों को समझ। और बीजेपी जो है उसका जो कम्युनिकेशन है और पार्टी से ज्यादा बेहतर है, वो अपना मैसेजिंग जो है, पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है, वो ज्यादा प्रभावी तरीके से।
इसका मतलब क्या ये माना जाए कि 2019 के चुनाव पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजर है?
बिल्कुल है, और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है,
उससे मजबूती मिली,
उससे मजबूती मिली।
लेकिन सवाल ये यहाँ पे आता है पूर्णिमा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से आस कब तक लगाए रहेगी?
देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि लोग उसमें, आप आज भी इधर उधर लीडर्स से सुन लीजिए, उनके ऊपर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए।
जी हाँ।
लेकिन कांग्रेस के पास और अल्टरनेटिव है क्या? क्योंकि कभी भी गांधी परिवार से निकल के कांग्रेस गई तो वो टूट जाती है, और कांग्रेस में जो है वो एक पैलेस इंट्रीग किया जाता है।
हालांकि रामचंद्र गुहा कहते हैं कि अब राहुल गांधी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बहरहाल, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। उत्तर प्रदेश में ईवीएम पर मायावती ने सवाल उठाए हैं, आइए सुनते हैं आम लोगों का वहां क्या कहना है।
ये जो स्ट्रैंग रहा है, इस पे मान लीजिए जनता ने काम के आधार पे इनको वोट दिया है। पहले हुआ था कि बैलेट पेपर में बेईमानी हो जाती थी, इसीलिए ये जो चुनाव आयोग है इन्होंने मशीन का प्रयोग किया, इसमें बेईमानी का हमारे तो कुछ लक्ष्य में आता ना कि बेईमानी हो।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोदी जी की ईमानदारी। उन्होंने जो भी काम किया है प्रधानमंत्री रहते हुए, चाहे नोटबंदी का फैसला लिया हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया हो, तो वो कुल मिला के जो भी किया है वो देश के हित में किया है।
ऐसा सर, मेरे हिसाब से ये एक धांधली सी लग रही है, जैसे एक तरफी जो एक सरकार बनी है उसमें, मैं इसलिए मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी, अगर यहाँ पे अखिलेश सरकार ने कुछ काम नहीं किया तो बीजेपी सरकार ने यहाँ पे क्या काम किया? मेरे हिसाब से उन्होंने भी ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया, तो उनको एक तरफी सरकार आनी चाहिए उनकी यहाँ पर।
नहीं तो आप कह रहे हो धांधली किस तरह की?
ईवीएम मशीनों में जो बार बार जो जिनसे मिल रहे हैं, और सुबह से मैं 10-15 लोगों से मिल भी चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, तो वो सभी यही कह रहे हैं कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी है।
जैसे वोमडन बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी बीजेपी आगे निकली है, बीजेपी जीत रही है, तो वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए।
अपना देश के लिए जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट मिला है।
किसने मेहनत किया?
मोदी ने,
और बाकी लोगों ने नहीं मेहनत?
मेहनत तो सभी करते हैं, पर कोई जो 100% एफर्ट लगाता है रिजल्ट तो उसी को मिलता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ है, मोदी ने थोड़ा बहुत धांधली किया है, हो भी सकता है, क्योंकि इतना लंबा हाथ मारना बहुत मुश्किल है।
इतने वोट बीजेपी को नहीं आने चाहिए थे।
क्यों?
देखो, सपा सरकार ने बहुत सारा यहाँ पे काम किया है, और जनता की जहाँ मतलब ये रैलियां जो वगैरह हुई है उनमें भी सपा का जनबाहुल्य देखने को मतलब था।
ये बीजेपी के प्रति लहर थी और जनता का जो है पूरा सपोर्ट था, कि मोदी का जो बैकग्राउंड था वो तगड़ा था और सभी ने मतलब अच्छे से सपोर्ट किया है, इसमें कोई ऐसी धांधली की बात।
ऐसा बैकग्राउंड मैंने तो अभी 3 साल में ऐसा बैकग्राउंड देखा नहीं है। कैसा बैकग्राउंड है? ये जो पीछे नोटबंदी आई थी उसमें मैं एक भी किसी भी राहगीर से, चलते राहगीर से आप पूछ सकते हो कि उसमें किसको, राहगीर को या गरीब को परेशानी हुई या फायदा हुआ? ये बोल रहे मोदी जी के ले रहे, तो पंजाब में भी मोदी जी थे, उनकी तो 10 साल से सरकार थी, जहाँ से घर छूट रहा है वहाँ पे मोदी जी को चिंता नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश में वहाँ पे उनमें ऐसी क्या चीज दिखी कि वो उत्तर प्रदेश अकेला जीत रहे थे?
वोटर का सवाल। आइए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहाँ बीबीसी संवाददाता विनीत खरे फोन पर इंतजार कर रहे हैं। विनीत, आप उस जगह पे खड़े हैं जिस जहां से एकदम एक तरह से आंधी तूफान उठ चुका है राजनीति का, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सांप निकल गया, अब लाठी आप पीटते रहिए, क्या होगा? ये लोग जो शिकायत कर रहे हैं उससे क्या असर पड़ने वाला है?
देखिए राजेश, यहाँ पर शॉक एंड ऑ यूपी वर्जन है। जिससे बात करें वो अपना कारण बता रहा है। मैं सुबह समाजवादी पार्टी के दफ्तर था, जैसे ही ट्रेंड्स आने शुरू हो गए, स्टंड साइलेंस। मैंने बेनी प्रसाद वर्मा से बात की, उनका कहना है कि पारिवारिक विवाद इसका कारण है। मैंने शिवपाल यादव को फोन लगाया, उन्होंने कहा घमंड के कारण पार्टी डूबी है। सपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस निष्क्रिय रही, उसका नुकसान हमें हुआ है। बसपा प्रमुख मायावती को आपने सुना, ईवीएम को दोषी ठहरा रही हैं। उसके बाद से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक जो सप्रेस्ड एंगर है, गुस्सा बहुत ऐसा लग रहा था दबा के रखा है, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताने देते नजर आए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो समीक्षा करेंगे। उनके साथ के जो कुछ साथी थे उनसे मैं बात कर रहा था, वो बहुत कन्विंस्ड है ईवीएम घोटाला हुआ है, कैसे ऐसा हो सकता है, स्टंड है टोटल।
यानी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि होने वाला क्या। विनीत, एक मिनट आप रुकिए, मैं पूर्णिमा से एक सवाल करना चाहता हूँ। पूर्णिमा, संक्षेप में जवाब दीजिए कि इस जो हार हुई है समाजवादी पार्टी की, कुनबा पहले ही एक नहीं था, अब क्या पार्टी में फॉर्मल स्प्लिट जिसे कहते हैं, दो फाड़, उसकी कोई आशंका दिखती है, या ये अब सब धीरे धीरे साथ आएंगे, अमर सिंह भी मुलायम सिंह भी? संक्षेप में,
साथ आने की तो मुझे कम संभावना दिखाई देती है, क्योंकि अखिलेश ने इलेक्शन खुद से लड़ा, अकेले उन्होंने प्रचार किया,
और शिवपाल ने शायद कहा था कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा।
हाँ, तो ये चला आ रहा है, और अखिलेश अगर जीतते तो ये पार्ट देते वो खाई, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है मुझे।
तो विनीत, आपको, आपने तो और जगह भी बात की होगी, क्या कहीं कोई, जाहिर सी बात है जय श्री राम के नारे भी लगे, राम जन्मभूमि के बारे में कुछ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के काडर या कुछ इस तरह की बात है कि कुछ उम्मीद बन रही है उनकी?
देखिए, जय श्री राम मंदिर वही बनाएंगे के नारे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लग रहे थे, लेकिन इसके बारे में जब मैंने उनके प्रवक्ता से पूछा, केशव प्रसाद मौर्य से पूछा, तो उन्होंने कोई बहुत गोलमोल जवाब दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास है और हम इस पर मतलब बहुत क्लियर उसमें जवाब नहीं दिया। तो उम्मीद है कि नहीं है, लेकिन नारे बिल्कुल लगे, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को भी खुद विश्वास नहीं हो रहा नेताओं को कि जिस तरह से एक भारी सफलता उन्हें मिली।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत, हमारे पास समय कम है लेकिन सुबह के कार्यक्रम में हम फिर आपके पास आएंगे।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,885, 7,600, 9,740, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
बीबीसी हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर, मैं हूं राजेश जोशी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड वो दूसरा राज्य है जहां बीजेपी को अप्रत्याशित नतीजे मिले हैं। बार बार कहा जाता था कि कांग्रेस और बीजेपी बराबर बराबर पर हैं, पर मुख्यमंत्री हरीश रावत को हिमालयी राज्य की जनता ने दो सीटों में यानी दोनों में नकार दिया। बीजेपी ने 70 में से 57 सीटें जीती हैं। आइए सुनते हैं आम वोटर इस जीत की क्या वजह बताता है।
सब कुछ अच्छा हो जाए जैसे कि देश विदेश में हो रहा है, सबसे पहले तो रोड बढ़िया हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ रोड सबसे बढ़िया होएंगी,
क्योंकि मोदी जी हमारे देश को पहले अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं तो उनके सानिध्य में तो बीजेपी को जीतना ही था, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं के लिए और एजुकेशन के फील्ड में और आगे रोजगार के संबंध में। मोदी जी बहुत अच्छा गरीबों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए, तो इसलिए मोदी जी को जीतना ही था। क्योंकि हरीश रावत ने जो अभी यूथ के लिए इतनी सारी वैकेंसी आई थी सारी कैंसिल कर दी थी, तो हम लोगों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था हरीश रावत के आने से, ऊपर से उनके ऊपर इतना सारा करप्शन है, वो खुद ही पकड़े गए थे करप्शन में, तो फिर इसलिए वो हार गए।
नई सरकार से उम्मीदें हैं जो उन्होंने घोषणाएं कर रखी है युवाओं को, रोजगार को लेकर के, और ये आपका जो ऑल वेदर रोड है अभी जो मोदी शिलान्यास करके गए थे, ये सब उम्मीदें हैं।
बिजनेस लाइन की पोलिटिकल एडिटर, हिंदू बिजनेस लाइन की पोलिटिकल एडिटर पूर्णिमा जोशी से मैं सवाल करता हूँ। पूर्णिमा, कांग्रेस से उत्तराखंड में कहाँ गलती हुई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हालांकि हरीश रावत को थोड़ा कम वक्त मिला है लेकिन वो बराबर बराबर पे ले आएंगे, इस तरह की बात कही जा रही थी, यहाँ तो एक तरफा मामला हो गया, 70 में से 57 सीटें।
देखिए, बात कांग्रेस की गलती की नहीं है, बात एक ट्रेंड जो आप यूपी में देख रहे हैं, जिस तरह से अपर कास्ट ने वोट किया यूपी में, लगता हुआ इलाका है उत्तराखंड, आप जानिए कि ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है स्टेट में, उत्तराखंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राह्मण्स, हाँ उतना ही ठाकुर, तो ये एक स्टेट है जो कि ऊंची जाति के लोगों ने बनाई है और उनका रुझान,
लेकिन वही ऊंची जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी सपोर्टर, कांग्रेस को सरकार में लाए थे।
इस बार नहीं लाए। आप देखिए ऊंची जाति के लोगों का रुझान यूपी में देखिए, और वही रुझान आपको ऊपर मिलेगा। ऊपर से एक नरेंद्र मोदी जो एक फैक्टर हैं उसको आप नेगेट मत कीजिए, हरीश रावत ने जो भी किया, अब देखिए जिस तरह से बीजेपी ने तोड़ मोड़ के वहाँ सरकार गिराने का प्रयत्न किया, 14 लोगों को कांग्रेस को ले लिया, इतना उनकी अपनी यूनिट में रिबेलियन था बीजेपी की खुद की, लेकिन वो सब कोई भी इशू नहीं रहा इस इलेक्शन में, सिर्फ एक इशू था वो नरेंद्र मोदी और उनकी डेवलपमेंट,
उनकी और वो उस पर ही वोट दिए हैं लोगों ने। अब नरेंद्र मोदी पर और उनके जो मुख्यमंत्री होंगे उन पर बहुत जिम्मेदारी होगी। पंजाब की बात अभी बाकी है लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, गोवा और मणिपुर में, मणिपुर में इरोम शर्मिला जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थी जिन्होंने 12-16 साल तक अनशन किया था, वो हार गई और बुरी तरह हारी, ऐसे मुद्दों को कोई असर नहीं होता है?
नहीं, देखिए जो एक्टिविस्ट होते हैं वो कभी भी चुनावी राजनीति में सफल होते नहीं हैं।
हालांकि अरविंद केजरीवाल
का एक अलग मूवमेंट है, एक अलग इतिहास है उनका, वो खाली एक एक्टिविस्ट नहीं थे, वो एक आरएसएस के साथ साथ लेके उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट कांग्रेस के खिलाफ चलाया, तो वो एक अलग राजनीति का पहलू था। लेकिन आप मेधा पाटकर को देखिए, इतना काम उन्होंने नहीं सफल हो पाई।
जी, तो चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 77 सीटें जीती हैं, अकाली दल सिर्फ 15 और बीजेपी 3 पर सिमटी है। देखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी का सिक्का पंजाब में नहीं चला। पंजाब के वोटरों की आवाज सुनते हैं।
कोई काम नहीं करे, बेरोजगार कर देते हैं और कुछ नहीं है, एक अब हो सारे बेड़े काम माड़ा मोटा कोई करे था वो भी यही खोल है, बादल पेट्रोल पंप पेगा दाऊ वाला ये भी खोले इसने।
कांग्रेस पंजाब में तो काम किया, पहले भी किया, अभी भी देखो करती है नहीं करती, उदो मौका बताएगा। ताहे दा मोदी नूं नहीं पुछदा है कोई पंजाब च, इत्थे किसी नूं कोई फर्क नहीं ना पैंदा, कोई नोटबंदी होए कोई कुछ होए, बाहुबली वाला काम है नहीं अपने, इस करके ही नोटबंदी का फर्क पैंदा अपने। आम आदमी पार्टी हवा है ती रुल गई पार्टी, लेकिन जब पिछे काम नहीं होया तो आगे क्या करेगी। उम्मीद तो होआ हर एक ते होआ, बाकी पूरी करनी नहीं करनी वह जिन्हें काम करना उसके हाथ से। उम्मीद तो बंदे जिन्हें वोट पाई है, उम्मीद करके लोगों ने वोट पाई है ना भी कुछ करूँगे, बाकी उनकी हिम्मत है भी कुछ कर सकते या नहीं कर सकते, सरकार भी कल्याण दी है।
ये पंजाब के वोटरों की आवाज़ थी। आइए सीधे चलते हैं पंजाब, जहां बीबीसी संवाददाता सलमान रावी टेलीफोन के जरिए हमारे संपर्क में हैं। सलमान, आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीद थी, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। आपने ये कहा था, मुझे याद है, कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, मुझे अभी तक ये याद है। ये बताएं कि वहाँ आम आदमी पार्टी कहाँ पर स्लिप कर गई?
देखिए, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बाद में बातचीत करने से पता चलता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। एक तो यह है कि जो बाहर से लोगों को लाके शुरू में जो उन्होंने उतारा, उसका एक मैसेज जो रूरल एरिया में गया वो थोड़ा सा गलत गया। और दूसरी चीज क्या थी कि होमवर्क जैसा समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी ने ठीक से किया नहीं था। हालांकि ये इनके पास बहुत अच्छा मौका था पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद ऑपोजिशन मेन तो बनकर आम आदमी पार्टी उभरी है। एक प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी के लिए था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए सब कुछ था, और अपना डेब्यू किया है यहाँ पर। आपको याद होगा कि यही तर्क देते हैं आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी दो सीटें थी उसकी जब शुरू की थी लोकसभा में, और आहिस्ता आहिस्ता वो
जी एक मिनट रुकेगा, अपने टेलीफोन लाइन पर रहिए, मैं पूर्णिमा से सवाल करना चाहता हूँ। पूर्णिमा, आम आदमी पार्टी पुरानी पार्टी नहीं है, 2012 में शुरू की थी, हम उससे इतनी उम्मीद तमाम लोग लगाए हुए थे, दिल्ली में जीत गई, पंजाब में 20 सीटें लाना कोई आसान काम नहीं है, तो आप उसको खारिज करेंगी या अभी आम आदमी पार्टी को भरोसा रखना चाहिए?
नहीं, खारिज तो किसी को भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी के लिए ये है जरूरी।
तो उसका असर दिल्ली की
सरकार, उसका असर दिल्ली पे जरूर पड़ेगा। आप देखिए, एक कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी को काफी उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस काफी स्ट्रांग होंगे।
लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत सारे काम कर रही है, स्वास्थ्य 24% शिक्षा पर उन्होंने बजट का रखा है, उसका असर तो पड़ेगा ही।
नहीं, उसका असर देखिए पड़ तो रहा है, दिल्ली में उनके मजबूती है आम आदमी पार्टी की, कोई मामूली बात नहीं है, एक नई पार्टी को इतना
बड़ा कुछ, बड़ा एक राज्य चाहिए,
एक बड़ा राज्य उनको जरूर चाहिए था और वो उनको नहीं मिला, तो ये बड़ा सेटबैक है।
सलमान
जी,
क्या अब जो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, बहुत संक्षेप में बताइएगा, हमारे पास समय कम है, ये वो राज्य है जब 1984 के बाद पूरे सिखों में एक कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, उसने अब कांग्रेस को वापस स्वीकार कर लिया है?
देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का इतना जबरदस्त फैक्टर था जो मैं शुरू से कह रहा था, और मेरी रिपोर्टों में भी आपने सुना होगा पंजाब से, कि लोग नशा और बेरोजगारी और जो बादल परिवार का जो क्लाउट बन गया था, जो बिजनेस को कब्जा कर लेते थे और भी चीजों पर जो उनका कब्जा हो जाए, उससे एक जो लहर उनके खिलाफ चली, और ऑल्टरनेटिव उनको कुछ मिला नहीं लोगों को। उनको ये समझ में आया कि मजबूत गवर्नेंस जो है शायद कांग्रेस ही दे पाएगी, क्योंकि आजमाया हुआ था कैप्टन अमरिंदर को पहले भी पंजाब के लोगों ने, शायद ये भी एक कारण रहा हो।
सलमान रावी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं पूर्णिमा आपके पास वापस आता हूँ। इससे पहले कि हम समाचार सुने, एक आप मुझे सवाल का संक्षेप में जवाब दीजिए कि इस जीत के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है उसको लागू करने में कितनी आसानी होगी?
बहुत आसानी होगी, और वो करेंगे भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक प्रचारक हैं और पिछले 2 साल से उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ जाता हो। तो वो एक बहुत कोऑर्डिनेशन की तरह बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं।
इसका और मतलब ये लगाया जाए कि राम जन्मभूमि वाला मुद्दा, क्या वो जो वादा किया था उसको पूरा कर
पाएंगे? राम जन्मभूमि मैं नहीं कहूंगी, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर
वो लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जोशी, इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की, आप शामिल हुई। अब हमारे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है। पंजाब में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है, वहीं गोवा और मणिपुर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बनाए हुए है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने नीदरलैंड्स की सरकार पर नाजियों की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया है। वहीं नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तुर्की के रुख की वजह से समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। सीरिया की राजधानी दमिश्क से मिली रिपोर्टों के मुताबिक दो बम धमाकों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्लामिक स्टेट को मात देने के इरादे को एक विश्वसनीय पहल बताया है। चीन का कहना है कि दो बच्चों की नीति से उसे उल्लेखनीय नतीजे मिले हैं। यमन से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना के हवाई हमले में 20 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार आपने सुने वात्सल्य राय से। इस कार्यक्रम पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल मैं राजेश जोशी आप सबसे अनुमति चाहता हूं। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था तिलक राज भाटिया ने। मुझे अनुमति दीजिए, कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।